I have two topics. I will tell you two topics for you. Choose one out of the two. Rajasekhar Prabhu chunenge. ठीक है? मैं पूरा हिंदी में बोल रहा हूँ. हिंदी में ही? हिंदी में बोलेंगे. सब लोग हिंदी जान रहे हैं. कोई अमेरिका से उतरे हैं इधर? कोई नहीं. सब लोग भारत के. ठीक है, हिंदी में बोलते हैं. वन टॉपिक इज, हम लोग अभी ऋषिकेश हरिद्वार उधर गए थे. एक देव प्रयाग है उधर. उस देव प्रयाग जाने के लिए ऊपर कुछ 40-50 किलोमीटर ऊपर जाना होता है पहाड़ के ऊपर, गोल 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 घूमकर. तो उधर जाकर हम लोग, उधर भागीरथी आप देख पाते हो. भागीरथी दूध जैसा है ऐसे. हाँ, इतना ऐसा सुंदर पानी है. और मंदाकिनी गंगा एकदम ट्रांसपेरेंट है, जैसे ग्लास जैसे दिखता है पानी उधर. तो दोनों जिधर संगम होता है उधर हम लोग नहाने के लिए गए थे. बहुत पुण्य तीर्थ माना जाता है उधर. तो आवाज कम है? ओ उधर सुनाई नहीं देता उधर. अभी कैसा है? से दोनों. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. Where is the speaker? किधर है? अच्छा. अच्छा ठीक है. उसको भी रहा है. पुट रबर बैंड. यह रबर बैंड है माज? यू हर रबर बैंड. आई कैन होल्ड इट टिल इट कम्स. आई कैन होल्ड इट. तो हम लोग ब्रह्मचारी यात्रा था कुछ 5 दिन का. उस ब्रह्मचारी यात्रा में चौपाटी के सब सीनियर ब्रह्मचारी आए थे. लगभग कुल मिलाकर 250 ब्रह्मचारी होंगे उसमें. हमारे 5 दिन का यात्रा हो उधर. तो उन्होंने क्या की थी, रामायण के ऊपर अलग अलग चरित्रों को लेकर एक एक भक्त को एक एक टॉपिक दिया था. और मुझे एक टॉपिक दिया था वो लोगों ने. मालूम है क्या टॉपिक? वो टॉपिक था रेस्पॉन्सिबल रामचंद्रा. वो टॉपिक दिया था रेस्पॉन्सिबल रामचंद्र. ऐसे अलग अलग भक्तों को अलग अलग टॉपिक था. और किसी को और कुछ टॉपिक था, जैसे
सनत कुमार प्रभु लक्ष्मण के ऊपर बोले.
हाँ करेक्ट. परफेक्ट परफेक्ट. दैट्स परफेक्ट परफेक्ट. अल्टीमेट. हरे कृष्णा. यस परफेक्ट. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. So their topic they gave me was responsible Ramachandra. That is a topic there. और एक दूसरा topic ऐसा है कि हम हमारे बुद्धि को कैसे इस दुनिया से ऊपर उठाकर नित्य निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला चेष्टा इत्यादि में हम कैसे एकदम एकाग्रत चित्त के साथ हम कैसे रख पाएंगे, वो दूसरा टॉपिक है. व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस? आप लोगों ने सुना है व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर कृणंदन. उस ऐसे एक है कृणंदना. उस तरह की बुद्धि प्राप्त करने के लिए क्या रहस्य है, वो उद्धव गीता में भगवान कृष्ण इनको उद्धव को बताते हैं. तो आप लोग इस दो टॉपिक में एक चुनिए. रासगर पर वोट लेंगे आपके. हैं जो टॉपिक चुनते हैं उसके ऊपर बोलूंगा मैं. ठीक है
प्रभु.
दूसरा है एक एह करण वन पॉइंट करण
अच्छा हाँ हाउ टू गेट वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस
हाउ टू गेट वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस वो उसके लिए कितने और बाकी के मकसद कुछ भी नहीं चाहते कुछ
अच्छा विच वन हैज बिगर नंबर
सेकंड
फर्स्ट अच्छा वन यू फाउंड आउट नंबर somebody counted number you'll keep account
okay
intelligence एक के है कुरनंदन ज्यादा है ठीक है where is our Amit Amit Prabhu yeah give my mobile गीता बेस होगा ना आपके पास गीता बेस उसमें देख लीजिए 11.28.1 ले लीजिए 11.28.2 आपके मोबाइल में होगा ना जो गीता बेस है आप ले सकते हैं एक श्लोक बोलेंगे ओह गीता बेस नॉट वर्किंग इन दिस Somebody has a Gita base? Okay. सब लोग पीछे दोहरा ये पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशुभ्रश्यते स्वार्थात् असत्य विनिवेशतः देखिए परा का मतलब है दूसरे लोगों का स्वभाव का मतलब है उनके आचरण उनके उनके आदतें कर्माणी का मतलब है वो जो उनका बिहेवियर होता है उनके कार्य कार्यकलाप होता है इस तरह दूसरे जनों के उनके स्वभाव और कार्यकलापों के संबंध में अगर कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है नहीं तो निंदा करता है ऐसे करने से क्या होता है स आशु ब्रश्यते स्वार्थाद ऐसे व्यक्ति के स्वार्थ का मतलब है नते विदु स्वार्थ कतिम ही विष्णु हमारे स्वार्थ क्या है विष्णु लोक प्राप्त करना वैकुंठ प्राप्त करना तो जो व्यक्ति इस तरह दूसरों की प्रशंसा और निंदा करता है वो व्यक्ति का अंतिम गति जो प्राप्त करना होता है वो छूट जाता है उससे और क्या होता है असति अभिनिवेशतः इस दुनिया के असत पदार्थों में उसका चित्त अभिनिविष्ट हो जाता है इस तरह भगवान ने बोला उद्धव को ये सरल संस्कृत है समझ लिया ना आपने पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशुभ्रश्यति स्वार्थात असति अभिनिवेशतः ऐसे बताते हैं तो ये बताते हैं इस तात्पर्य में क्या बताते हैं इस दुनिया में लोग दूसरे जनों की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या होता है इसलिए जैसे अगर किसी ने नया कार लिया हो कोई उसके फ्रेंड बोलता है इतना सुंदर कार है इतना अच्छा कार है मुझे बहुत पसंद आता है ये कार सिर्फ मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ पैसा नहीं है हमारे पास लेकिन पता नहीं तुम जैसे बेवकूफ़ को कैसे प्राप्त हो गया है ऐसे वो बोलेगा नहीं लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कभी है? तो इस तरह किसी के पास कुछ हो तो उसकी प्रशंसा करना कभी कभी इस दुनिया में कैसे उठता है वो कैसे होता है क्योंकि ईर्ष्या भावना के कारण होता है ऐसे बताते हैं इस तरह इस दुनिया में कभी कभी हम किसी चीज़ की निंदा करते हैं क्यों निंदा करते हैं हम अपने आप को उनसे श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते हैं इसलिए उसकी निंदा करते हैं इस तरह जैसे आपको मालूम है एक सियार था तो कूद पड़ा एक अंगूर को पकड़ने के लिए ना पकड़ नहीं पाए वो तो उसने क्या बोला सबको हाँ वो तो कट्टे हैं ऐसे नहीं बोला कि मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ वो उसको इकट्ठा करके घोषित किया इसे उसने। इस तरह कुछ लोग बोलते हैं कि हम बड़ा घर हमने नहीं लिया है क्योंकि मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए लिया नहीं, ऐसे कोई बोलता है। कोई बोलता है हम अमेरिका जाना नहीं चाहते क्योंकि माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं। वो ट्राई किया, चार बार मिला नहीं, वो बोलेगा नहीं, वो देश प्रेम हूँ मैं, देश प्रेमी हूँ ऐसे। तो इस तरह के बोलते हैं कि इस दुनिया में प्रशंसा करना नहीं तो किसी और की निंदा करना, ये कैसे लोग करते हैं, ये ईर्ष्या के ऊपर आधारित है इस दुनिया में। और असत्य अभिनिवेश है, बोलते हैं कि इस दुनिया के क्षणभंगुर चीज़ों के ऊपर अगर एक इंसान ध्यान देगा वो हमेशा किसी को प्रशंसा करेगा, किसी का निंदा करेगा। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण इस दुनिया में अनेक तरह के झगड़ा स्थापित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक बार ऐसे एक ब्रह्मचारी सो रहा था, इसमें हमारे सेवा स्थान बोलते हैं हमारे मंदिर में, तो सेवा स्थान का मतलब है जिधर जो मरीज ब्रह्मचारी होते हैं उनके लिए आराम करने के लिए स्थान है, जो बुकर होता है। तो कोई तो ऐसे उधर लेटा था, उसके फ्रेंड आया मिलने के लिए, आकर पूछा प्रभु जी आपका तबीयत कैसा है, मैंने सुना कि आपका ठीक नहीं है तबीयत, थैंक यू। तो वो बोला हाँ प्रभु जी अभी आयुर्वेदिक डॉक्टर को जाकर मिला, अभी दवाई लिया हूँ, आराम कर रहा हूँ। तो वो बोला आयुर्वेदिक क्यों लिया प्रभु जी, आयुर्वेदिक तो बहुत लंबा टाइम लगता है ठीक होने के लिए, आपको एलोपैथी लेना था, ऐसे बोला उसने। तो वो जिनका बुखार हुआ वो बोला कि वो पेशेंट बोला देखिए मैं आयुर्वेदिक को मैं मानता हूँ बहुत, क्योंकि स्वयं भगवान धन्वंतरी ने अपने हाथों से सब दवाई दिया है, इसलिए हम आयुर्वेदिक को श्रेष्ठ मानते हैं। तो वो दूसरा भक्त था वो थोड़ा कुपित हो गया, वो बोला कि इसका मतलब क्या है, आप बोलते हो कि एलोपैथी काम का नहीं है, ये बोला कि मैं बोला नहीं लेकिन आप समझ लेना चाहिए काम का नहीं है इसलिए हम आयुर्वेदिक लेते हैं, ऐसे बोला उसने। तो दूसरा भक्त बोला कि देखो कृष्ण बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो माता सरम प्रत्यारे, सब कुछ भगवान से ही आता है, इसका मतलब एलोपैथी टैबलेट भी आए होंगे भगवान से ही, क्या है इस दुनिया में जो भगवान से नहीं आया है। ठीक है धन्वंतरी आकर दिया नहीं लेकिन हमें मान लेना चाहिए सब कुछ भगवान से आता है, ऐसे बोला वो। तो ये बोला कि देखो तुम्हारे एलोपैथी टैबलेट खाने से इतना साइड इफेक्ट होता है, इंसान अच्छा कि मर ही जाओ खाए बिना एलोपैथी, कभी मेरे जीवन में 15 साल से हमने एक एलोपैथी टैबलेट चुआ भी नहीं, ऐसे बोला उसने। तो ये बोला अरे इतना तुम घृणा क्यों करते हो एलोपैथी टैबलेट से, तुम्हारा आयुर्वेदिक काम करने के लिए 5 साल लगता है, बहुत धीमी से काम करते। इस तरह दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ। तो जो मरीज व्यक्ति था बैठ गया, वो दोनों एक दूसरे के चेहरे के ऊपर हाथ दिखाते हुए ऐसे झगड़ा हो गया। तो इतने में मैनेजर आ गया आवाज़ सुनकर, क्या हो गया, वो बोला प्रभु जी मैं आराम से सो रहा था, उठा दिया इन्होंने हमको, इस तरह झगड़ा कर रहे हैं प्रभु जी। तो आप लोग देख सकते हैं इस दुनिया में इस तरह भौतिक चीज़ों के संबंध में अगर हम लोग बातचीत करेंगे, इस दुनिया में श्रेष्ठ क्या है निम्न क्या है, इस तरह हम तुलना करेंगे ना, इससे वाद विवाद होगा। कोई बोलता है गोरा चमड़ा वाला अच्छा है, काला अच्छा नहीं, कोई बोलता है काला अच्छा है, अमेरिकी लोग बोलते हैं काला उनको पसंद आता है बहुत उनको, और भारतवासियों को गोरा बहुत पसंद आता है, ऐसे ये श्रेष्ठ है। इसका मतलब है ठीक है किसी को पति नहीं तो पत्नी गोरा मिल गया, लेकिन हमेशा झगड़ा करने वाले होते हैं, तो गोरा मिलकर क्या प्राप्त हुआ है ना। इस तरह आप देखेंगे इस दुनिया में तुलना करते हैं लोग भौतिक पदार्थों के बीच में, जो तुलना इधर बताया जा रहा है ये पैराग्राफ में वही बताया गया। द वर्ड्स असति अभिनिवेशतः बाय अब्सॉर्प्शन इन द टेम्पररी और अनरियल। कभी कभी कुछ लोग भौतिक चीज़ों में क्या निम्न है क्या श्रेष्ठ है ये तुलना करते समय लोगों को तुलना करते हैं कभी कभी। कोई बोलते हैं कि ये वो भक्तिवेदांत ठाकुर बाद में बताते हैं इसके बारे में, कोई बोलते हैं कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, कोई बोलते हैं मैं कैपिटलिस्ट हूँ, उनके बीच में वाद विवाद होता है। इस तरह कोई ब्लैक एंड वाइट, इस तरह धनी और गरीब इसको तुलना करते हैं लोग इस तरह। कभी कभी अगर धनी आदमी कोई बड़े कार में आता है तो लोग बोलते हैं हे बड़ा आदमी आया है, श्रेष्ठ आदमी आया है। अरे धनी होने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता हा? और गरीब होने से कोई निंदनीय नहीं है, क्योंकि भगवान देखते हैं गरीब हो अमीर हो उसके अंदर क्या गुण है वो देखते हैं ना भगवान, है ना। तो लेकिन बाहरी दृष्टि से देख कर लोग किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, किसी को निम्न मानते हैं। इस तरह मानना ही ये इसके बारे में भगवान बता रहे हैं, अस्यात्म बुद्धिर गुणपेत्री धातु के, उसमें बोलते हैं उस श्लोक में, ये शरीर जो कफवात पित्त से बनाया हुआ शरीर है इसको श्रेष्ठ मत मानो, आत्मा श्रेष्ठ है। और आत्मा को छोड़कर बाहरी आवरण जो है शरीर जो है उसमें निम्नता श्रेष्ठता तुम देखोगे तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि तुम्हारे बुद्धि इस भौतिक दुनिया के विषयों में पूरा डूब जाएगा, ऐसे बताते हैं। इस तरह इधर बता रहे हैं कि ये कैसे डूब जाएगा ये भी बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए कभी कभी कोई भक्त सोचता है कि अगर हमारे गुरु के शिष्य हो तो वो श्रेष्ठ है, इस तरह कभी कभी एक नवसिखिया भक्त सोचता है। ऐसे ऐसे पलाना पलाना गुरु, कोई कृष्णदास महाराज हैं, ये कृष्णदास महाराज के शिष्य सब इतने अच्छे हैं, क्या हम बोल सकते हैं इसे? अगर आप बोलेंगे कृष्णदास महाराज के सब अच्छे हैं, कोई ऐसे एक निकलेगा जो अच्छा नहीं है, वो भी निकलेगा, है ना। इस तरह हम जनरलाइज स्टेटमेंट हमें नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम केस टू केस देखना चाहिए। एक हो सकता है, इसलिए क्या करते हैं कुछ कुछ लोग इस्कॉन में आते हैं, एक लाइफ हमारा आया एक इस्कॉन मंदिर में, उसको ठहरने के लिए गेस्ट हाउस नहीं मिला उसको, तुरंत वो चिल्लाने लगा, सब लोगों के पास जाकर बोलने लगा कि इस्कॉन के लोग क्या हैं, बदमाश हैं, मुझे अच्छा नहीं है, मुझे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दिया इसे। तो 3-4 साल के बाद हमारे पूना मंदिर में आया, तो आते समय ही वो तांडव कर रहा था वो, तो मैंने इंचार्ज को बोल दिया कि कुछ पूछो मत, इनको दे दो कुछ ठहरने की व्यवस्था कर दो। तो ठहरने की व्यवस्था किया हमने, एक कमरा, क्योंकि उसको सिर्फ 4 घंटा चाहिए था, उसको रात को कोई और आने वाला था लाइफ में, तो उसको 4 घंटा दिया हमने। तो अगले बार वो गेट में आ गया, हमारे इंचार्ज बाकर आ गया मेरे पास, मुझे आ गया वो वापस आ गया, इतना श्वास ले रहा है जोर जोर से, ठीक है जा पूछो उसको कितने कितने समय के लिए चाहिए, हो सकता है 2-3 घंटे के लिए चाहिए। तो वेट करके देखा, वो आकर बोला अभी हम 3 दिन ठहरने के लिए आए हैं, ऐसा आकर बोला उसने। प्रभु जी उसको ना कैसे बोलूँगा पता नहीं, प्रभु जी इतना तांडव करेगा, उसको देखते ही मुझे डर आ रहा है मुझे, ऐसे बोला उसने। तो मैंने बोला ठीक है हाँ मैं हैंडल करूँगा, तुम भी आओ। तो मैं भी गया था, तो उनको पूछा कि आपको कितने 3 दिन चाहिए, आप तो लास्ट मिनट बोल रहे हैं, पहले नहीं बोला आपने, ठीक है आइए। एक रूम भी है हमारे कुंजी बिहारी मंदिर में, एक ही रूम था ना उस टाइम। मैंने मंदिर के पीछे बैम्बू हाउस में लेके गया उनको, उधर एक बैम्बू रूम दिखा दिया उनको, बैम्बू से बनाया हुआ, बांध से बनाया हुआ दिखा दिया। बोला कि जब वो भर जाता है ये दे देते हैं हम, लाइफ मेंबर को बोला मैंने, चाहे तो आप ठहर सकते हैं। तो बोला कि थोड़ा सोच कर मैं बताऊंगा आपको, बोला। तो बाहर गया, वापस लौटा नहीं वो, वो ढूंढ लिया दूसरा कुछ ठहरने के लिए, क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं था ये। तो मैं जो डिपार्टमेंट इंचार्ज था वो उसने बोला कि प्रभु जी कैसे आपने टैकल किया इसे। मैंने बोला कभी भी ना नहीं बोलने का, वो रूम देने का नहीं तो ये रूम देने का, अगर दोनों नहीं तो डॉर्मेटरी दिखा देने का, है ना, ऐसे बोला। तो इस तरह, लेकिन वो व्यक्ति बाहर तो ठहरा था लेकिन दर्शन के लिए मंदिर में आता था। लेकिन ये भक्त को मैंने बोला लेकिन रोज तुम राजभोग खिला दो उसको, 3 दिन के लिए राजभोग, बाहर ही ठहरा था कहीं तो ठहरा था। तो जाते जाते दिन आकर बोला कि प्रभु जी इस्कॉन के लोग इतने अच्छे हैं आप लोग, तो मैंने सुना कि पहले आप इतना चिल्ला रहे थे इस्कॉन की बदनामी दे रहे थे, अभी आपको इस्कॉन की गुणगान कर रहे हैं अभी। तो लोग क्या करते हैं, एक संस्था के बारे में ऐसे दोषारोपण करते हैं, नहीं तो गुणगान करते हैं, सिर्फ एक अनुभव को लेकर, बस एक ही अनुभव उसका। अगर आप उसका एक अच्छा आदमी मिल गया तो सारे इस्कॉन अच्छा बोलेगा, अगर एक बुरा मिल गया तो बोला सारा बुरा है, करेक्ट नहीं ऐसे बोलेंगे। तो एक हमारे कॉलेज का लड़का था पूना के, वो गया उधर चौपाटी मंदिर में गया, और आने के बाद वो 3 पेज का लेटर लिखा मुझे, प्रभु जी आपने जाने के लिए बुला करके मैं गया प्रभु जी बम्बई में, प्रेरणा के देने गया, हजारों विद्यार्थी थे, मैं ऐसे दरवाजे के बीच में खड़ा था। मैं वो लोग बड़े पत्याला लेकर आ रहे थे हलवा के, मुझे देखा बीच में खड़े होकर हट जा करके बोल दिया उन्होंने। और ऐसे उन्होंने बोला कि अभी मंदिर में मैं घुस रहा हूँ, वो लोग बोल रहे हैं हट जाओ बोल दिया। तो मुझे तो हार्ट अटैक आ गया मुझे। तो मंदिर के अंदर मैं घुसा ही नहीं, यू टर्न लेकर आ गया वापस। और ट्रेन में आते समय हट जा ऐसे मेरे हृदय में आवाज सुनाई देता है, ऐसे बोला। तो ये 3 पेज का लेटर लिखा, लग रहा था मुझे उसका आंखों में आंसू आ रहा है ऐसे। तो वो बोला कि आपने बोला श्रेष्ठ मंदिर है, आपने बोला करके मैं गया, इस तरह का अनुभव मिला मुझे। अभी मैं जीवन में कभी जाऊंगा नहीं प्रभु जी उधर, ऐसे बोला उसने। मैंने बोला मेरी बात मानो, मेरा आदेश है तुम्हारे लिए, और एक बार जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं बोल रहा हूँ प्रेरणा के दिन मत जाओ, दूसरा दिन जाओ। बोला ठीक है। दूसरा वो जाने के पहले मैं बोला तुम जाओ मत, मुझे बोले बिना जिस दिन जाओगे मुझे बोल कर जाना, ठीक है। तो फ़ोन कर दिया, कल मैं जाने वाला हूँ। तुरंत मैं मुंबई के ब्रह्मचारी को एक पकड़ा फ़ोन में, बोला कि इसका ऐसे बुरा अनुभव हुआ इसको आपके मंदिर में, आप थोड़ा इसको संभालो। वो बोला हम संभालेंगे प्रभु जी, हमको लव एंड केयर मालूम है। हम तो केयरिंग के लिए, हमको डॉक्टरेट मिला है ना। जब ये गया, ये लड़का गया, उसको ऐसे स्वागत दिया गया उधर, उसको लेके जाकर बिठा कर गोविंदा से खिलाया उसको। अच्छा है, अच्छा इतना प्रसाद खिलाया, पैकेट में डालकर इतना प्रसाद लेके जाने के लिए भी दिया उसको, और भगवान के बड़ा हार पहना दिया उनको, और विविध पुरस्कार भेंट दिया। और बैठ कर मुस्कुराते हुए घंटों घंटे बात किया उसके साथ, और वापस लौटा, अभी 6 पेज का लेटर लिख दिया उसने। राधे श्याम प्रभु अभी मैं मानता हूँ आपने जो बोला सही है, है ना। तो इस तरह से वो ही लड़का, क्या ये पेंडुलम देखा आपने, पेंडुलम पेंडुलम क्या करता है, ये ऐसे जाता है उसके बाद ऐसे जाता है, इस तरह उसका पूरा अनुभव बदल गया उसका। पहले बुरा बुरा बोल रहा था, अभी अच्छा अच्छा बोल रहा था वो। इससे हम लोग एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं, किसी भी चीज़ को कोसने के पहले हमें यह बात समझना चाहिए कि अगर कोई बुरा है तो वो पूरे के पूरे बुरा नहीं है। वो बुरे व्यक्तियों के अंदर भी कुछ अच्छाई भी है। उदाहरण के लिए एक वेश्या आती है हरिदास ठाकुर को पद दलित करने के लिए, पद भ्रष्ट करने के लिए। खुद आ नहीं रही है वो, लेकिन रामचंद्र का नाम की एक द्वेषी ने भेजा है उसको। लगता है कि वेश्या के मन में इतना बुरा कुछ सोच नहीं था, लेकिन रामचंद्र का ने ऐसे भेजा था उसको। लेकिन देखा उन्होंने हरिदास ठाकुर के अंदर कितना दृढ़ता है, वो हरिनाम में कितना मग्न है, कितना आनंद लूट रहे हैं। तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन देखा उन्होंने, देखकर तीसरा दिन वो हरिदास ठाकुर ने इतना ही बोला उसको कि मेरे पूरे नाम होने के बाद में तुमसे बात करूँगा, और अभी के लिए तुम बैठकर सुनो ध्यान से, ऐसे बोला उन्होंने। तो ध्यान से सुन रही थी। तो सुनने के बाद क्या हुआ, क्योंकि हरिनाम को हम लोग ध्यान से सुन नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत शुद्धिकरण के लिए टाइम लगता है। अगर हम अच्छा सुनते हैं हरिनाम को, उससे चित्त शुद्ध हो जाता है बहुत जल्दी। तो सुन सुनकर तीसरा दिन खुद ही बोलने लगी वो वेश्या, हे भगवान हरि, ओ हरि, ऐसे पुकारने लगी वो खुद ही। ऐसे पुकार कर, भगवान का पुकार कर, उसके हृदय में भी भावना जागृत हो गया, भावना उठ गया। तो उस समय क्या किया हरिदास ठाकुर ने, उसको भक्ति में जोड़ दिया, भक्त बना दिया उन्होंने ऐसे। लेकिन मैंने क्यों आपको ये उदाहरण दिया, इस दुनिया में वेश्या के अंदर कौन अच्छा गुण देख सकता है। कभी कभी हम ट्रेन में देखते हैं ऐसे ऐसे ताली बजा कर आते हैं, देखा आपने, वो वेश्या नहीं है, वो नपुंसक होते हैं ना, वो दोनों के बीच में होते हैं वैसे। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग उनको देख कर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम लोगों के पास कुकी रहता है ये भिखारियों को देखने देने के लिए, हम देते हैं। कभी कभी ऐसे स्त्रियाँ जब ऐसे लोग आते हैं, हम कुकी देते हैं, वो लोग ऐसे हाथ जोड़कर बोलकर ऐसे लेते हैं उसको भक्ति के साथ, उनके अंदर भी भक्ति हो सकता है ऐसे। इसलिए एक बार ऐसे जीसस का एक कहानी आता है कि अनेक लोग पत्थर फेंक रहे थे एक वेश्या के ऊपर। जीसस ने उनको रोका और बोला कि अगर आप में से किसी ने एक भी पाप नहीं किया हो तो तभी तुम एक पत्थर उठाओ हाथ में, कोई उठा नहीं पाए, सब लोग पत्थर फेंक कर भागे उधर से। तो इस तरह दुर्गुण कुछ लोगों के अंदर हो सकता है, लेकिन उनके अंदर भी सदगुण भी साथ में भी होता है, पूरे के पूरे दुर्गुण नहीं है किसी के अंदर। जैसे देयर इज अ सेइंग, एवरी सेंट हैड अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, ऐसे बोला जाता है। हर एक साधु महात्मा होते हैं उनके पास्ट, पास्ट का मतलब है उनके भूतकाल में हो सकता है कुछ समस्याओं को झेल कर वो साधु बने हैं। इस तरह हर एक पापी जो है उसके लिए भी भविष्य उज्ज्वल है। जैसे आपको मालूम है अजामिल को वैकुंठ एयरप्लेन आकर उठा कर लेके गया उनको, लेकिन उनका बुरा भूतकाल था, फिर भी वो सुधर गया ऐसे। इस तरह मृगारी का आदतें बहुत बुरे थे वर्तमान काल में, लेकिन नारद मुनि की सानिध्य प्राप्त होकर वो सुधर गए और पवित्र बन गए, और इतने पवित्र बन गए कि एक चींट को भी वो दुख नहीं देना चाहते थे, है ना। ये तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेडिकल चेंज बोलते हैं। रेडिकल का मतलब क्या है, जो आदमी अनेक पंछियों को मारता है, जानवरों को काटता है, सब करता है, लेकिन अभी चींट को भी मारना नहीं चाहता, वो कितना परिवर्तन आ गया उसमें। जैसे अमेरिका के लोग जो गोमांस खाते थे, अभी आनियन गार्लिक खाना भी छोड़ दिया उन्होंने, कांदा लहसुन खाना भी छोड़ दिया। जो लोग शराब पीते थे अभी काफ़ी पीना छोड़ दिया, इतना परिवर्तन आता है उनमें, है ना। तो ये परिवर्तन के बारे में मैंने क्यों बोला अभी, इसका कारण है हम लोग एक व्यक्ति को देखते हैं, उसमें अगर कुछ दोष है हम उसका एक छवि हमारे मन में बना लेते हैं उसके बारे में, उसके माथे के ऊपर लिख देते हैं कि ये बुरा व्यक्ति है। ऐसे 5 साल के बाद हो सकता है कि व्यक्ति सुधर ही गया, उसके अंदर जो बुरे आदतें थे आदतों के कारण उसको बहुत तंग मिला, नुकसान मिला जीवन में, बहुत दुख सामना करना पड़ा, लेकिन दुखों को सामना करते करते वो सीख लिया कि ये बुरा आदत है, छोड़ देना चाहिए, छोड़ ही दिया, वो सुधर गया, सज्जन बन गया। फिर भी लोग क्या याद रखते हैं मन में, उसको देखते ही लोग क्या सोचते हैं, अरे आ गया अभी, कौन है मालूम है मुझे। इस तरह हम लोग पूर्ण, हम लोग पुराना इसको रखते हैं, परसेप्शन के क्या बोलते हैं, परसेप्शन दृष्टिकोण का मतलब है, या दृष्टिकोण इज ऑलरेडी थिंग, परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब है पुराना दृष्टिकोण को हम छोड़ते नहीं, इसको नेकेड पेंचो बोलते हैं। एक छोटा लड़का था, छोटा गांव में नंगा घूमता था, एक छोटा बच्चा था वो, उसका नाम था पेंचो। तो गांव वाले सब देखते थे उसको, नदी में नहाता था और खेलता था, कूदता था ऐसे, लेकिन बड़ा होकर वो लंदन जाकर बैरिस्टर करके लॉ पूरा करके वापस लौटकर हाईकोर्ट मैजिस्ट्रेट बन गया वो। तो गांव वालों को न्यूज़ मिला कि बड़े कोर्ट में हाईकोर्ट मैजिस्ट्रेट बना है, वो लोग हंस पड़े, वो तो नेकेड पेंचो है, वो कैसे इतना बड़ा हाईकोर्ट जज बनेगा वो। नहीं नहीं नहीं, आपको मालूम है, आप खुद जाकर देखो, बन गया वो, पढ़ाई किया, लंदन गया। वो लोग बोले हो सकता है उसको वेतन नहीं दे रहे हैं कुछ भी, फ्री में कर रहा होता शायद, ऐसे लोग बोलने लगे ऐसे। इस तरह लोग विश्वास नहीं करते हैं कि एक इंसान में ऐसे परिवर्तन आ सकता है। इसलिए हम लोग भी अगर लोगों को देखते हैं, अगर एक व्यक्ति को देखकर हम दोषारोपण करते हैं, अगर 5 साल के बाद वो सुधर गया तभी भी हम वो ही दोषारोपण करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति निरपराधी है, वो शुद्ध है, उसको पापी बोलना है, उससे अपराध लगता है, समझा ना आपने। इस तरह शास्त्र बताते हैं कि इस दुनिया में सब लोग जो प्रजल्प करते हैं, प्रजल्प का आधार यही चीज़ है। आधार क्या है, सब प्रजल्पों का आधार एक भौतिक परिस्थिति को दूसरे परिस्थिति से तुलना करना, ऐसे एक अच्छा है, ये बुरा है, ये काला है, ये गोरा है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा, ये अंगूठा छाप है, ये पढ़ा लिखा है, ये धनी है, ये गरीब है। इस दुनिया में इस तरह के भेदभाव हम करते हैं ना, लोगों के बीच में जब स्पर्धा होता है दुनिया में, स्पर्धा का यही आधार है। आप देख सकते हैं, अगर किसी के पास मेरे से कुछ श्रेष्ठ चीज़ हो तो हम लोग क्या करते हैं, उससे आकर्षित होते हैं, उसके पास जो है वो मुझे चाहिए। जैसे आप, आपको मालूम है कि जैसे इंद्र, इंद्र सब देवताओं का राजा था ना इंद्र, लेकिन असुर लोगों ने सोचा कि ये देवताओं को पराजित करके इंद्र के सिंहासन में बैठ जाना चाहिए, जैसे हिरण्यकशिपु ने ऐसे बैठा ऐसे। तो इस दुनिया में अगर कुछ श्रेष्ठ चीज किसी के पास होता है तो लोग उसके पीछे उस चीज को लोगों को चाहिए, अगर कोई निम्न है तो लोग क्या करते हैं उसकी मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसको, अगर उससे निम्न है तो ऐसे है। तो एक श्लोक है और एक श्लोक हम दोहराएंगे, पीछे बोलिए सब लोग, गुणाधिकान मोदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समानादन विच्छेन नातापैर अभिभूयते। ये नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को उपदेश के रूप में बताया, उन्होंने उन्होंने बोला कि हे बच्चे ये बात समझ लो, तुम्हारे से गुण से जो अधिक है ना उनको क्या करना चाहिए, प्रेम से स्वागत करना चाहिए उनकी, ऐसा नहीं कि तुम्हारे से कोई अधिक है उनको घृणा करो ईर्ष्या करो, वो नहीं करना चाहिए। और तुम्हारे से जो निम्न है उनको क्या करना चाहिए, अनुकंपा दिखाना चाहिए, अगर कोई निम्न हो तो तुम्हारे जो सम है सम स्तर पर है उनको क्या करना चाहिए, मैत्री जोड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर लिखते हैं, प्रभुपाद जी हमारे से वरिष्ठ कोई है तो हम ईर्ष्या करते हैं, हमारे से कनिष्ठ कोई है तो हम उनको वी ट्राई टू बॉस ओवर देम, व्हाट यू से बॉस ओवर, अधिकार जमाते हैं। अगर हमारे सम कोई हैं तो उनके पास जाकर हम अपना कार्यकलापों के बारे में बोलना चाहते हैं, अरे ऐसा मत सोचो कि तुम बड़े हो, मैं भी बड़ा हूँ, तुमसे भी बढ़कर कुछ काम में क्या हो, मैं दिखा देता हूँ तुमको, आओ इधर, इस तरह की बात। तो ये नारद मुनि सीक्रेट बता रहे हैं कि इस दुनिया में जीते समय कैसे हम अधिभौतिक क्लेश से हम दूर रहे। अधिभौतिक क्लेश मालूम है आपको क्या है, जो मच्छर काटता है, नहीं तो मच्छर जैसे लोग काटते हैं इस तरह है। वो भी अधिभौतिक क्लेश है। तो इस दुनिया में आप किसी को भी पूछो कैसे हैं प्रभु जी, कैसे हैं माता जी, सब ठीक है क्या, लोग बोलेंगे हाँ ठीक हूँ, लेकिन ऐसे बोलेंगे वो हमेशा। एक भक्त गया था उधर मेरा रोड में जाकर, एक नया नया शादी हुआ, शादी सुधाया एक परिवार था, उनको बोला कि प्रभु जी आपको खुद का घर मिल गया, आपको ऊपर सिंटेक्स टैंक है, 24 घंटा पानी आता है, आपके बच्चों के लिए स्कूल भी एकदम निकट है, अस्पताल आपके घर के सामने है, क्या कमी है प्रभु जी, कुछ नहीं है, आप तो आनंद की दुनिया में हो, सब खुशी में हो, है कि नहीं। वो बोला हाँ खुशी में ही हूँ ज़रूर, लेकिन एक समस्या है, क्या है, अरे मच्छर काटते हैं पूरा मेरा रोड में, मच्छर ही मच्छर है इधर, दरवाज़ा खोलो दर्जनों मच्छर आ जाते हैं अंदर, सोने नहीं देते, ऐसे बोलते हैं। इस तरह किसी को पूछो आप आपकी जीवन कैसे चल रहा है, सब ठीक है, ठीक है लेकिन मेरे सास हैं, बोलेंगे कोई बोलेंगे लेकिन मेरे बहू हैं, ऐसे बोलेंगे कोई बोलेंगे, ओ लेकिन मेरी पत्नी है, लेकिन मेरे पति हैं, नहीं मेरे पड़ोस ऐसे हैं, नहीं तो हमारा कंपनी ऐसा है, अरे कंपनी में एक व्यक्ति है वो हमेशा चिल्लाता रहता है ऊपर, वो उसका जब एक हफ्ता छुट्टी लेकर जाता तो कितना अच्छा लगता है, शांत वातावरण कंपनी में। इस तरह अलग अलग लोगों के लिए कम से कम एक व्यक्ति है दुनिया में तकलीफ देने के लिए। तो ये बोलते हैं नारद मुनि, इस दुनिया के सब तकलीफों से ऊपर उठने का उपाय ये श्लोक है, क्या है, गुणा अधिकान मुदम लिप्से, अगर हमारे से कोई बड़े हो हम उनको प्रेम से स्वागत करें, बोलते हैं, और आपसे गुण में कोई कमी हो, किसके अंदर कम हो, उसको क्या करें, आप अनुकंपा दिखाओ और सम लोगों को के साथ मैत्री जोड़ो। इस तरह सब जीवराशियों के साथ आप ऐसे पेश आओ कि उनके साथ आपका कुछ विरोध भावना नहीं होगा, ऐसे बताते हैं। तो परीक्षित महाराज के एक सुंदर श्लोक है, पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिं प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम्याम् उपयामि सृष्टिं नमो सर्वत्र मैत्रेस्तु नमो द्विजेभ्यः। देखिए तीन वर मांग रहे हैं परीक्षित महाराज भगवान से, वो बोल रहे हैं कि हे भगवान मुझे हर जन्म में भगवान कृष्ण से प्रेम मेरे हृदय में जागृत हो, भगवती अनंते अनंत भगवान जो भगवान कृष्ण है उनके ऊपर प्रेम जागृत हो, और दूसरा बोलते हैं कि भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो मुझे, ऐसे बताते हैं। तीसरा बोलते हैं कि सर्वत्र मैत्री अस्तु बोलते हैं, सब दिशा में मेरे मैत्री हो सब जीवों से, ऐसे बोलते हैं, ताकि इस दुनिया में जीते समय भी मैं भगवत चिंतन कर पाऊं। क्योंकि इस दुनिया में अगर सब जीवों से हम मैत्री नहीं जोड़ते हैं तो वो पर जीव आपको क्लेश देंगे, जिससे भगवत चिंतन नहीं हो पाएगा आपको। इसलिए भागवत में नारद मुनि बताते हैं, खास करके गृहस्थों के लिए एक आदर्श बता रहे हैं कि आपके मामा मामी दादा दादी नाना नानी कोई आकर आपको उपदेश दे और पैसा कैसे बनाने का वो बताते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, सर को ऐसे हिला दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या आइडिया बताया आपने, वाह वाह शाबाश शाबाश, ऐसे बोल दो आप और ऐसे सिर हिलाओ। जैसे हमारे दक्षिण भारत में तंजावुर टांजोर नाम का एक स्थान है, उधर एक बैल होता है, अगर आप मृदंग बजाएंगे ना टन 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 टन, वो ऐसे ऐसे हिलाएगा वो। आपने देखा, आपने देखा, आपने नंदी बैल बोलते हैं उसका, अच्छा बड़ा सिंह होता है उसका, ऐसा ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो बोलते हैं नारद मुनि युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर युधिष्ठिर अगर आपके रिश्तेदार ऐसे आइडिया देंगे तुमको पैसा बनाने के लिए, ऐसे सिर हिलाओ, वो 10 मिनट के बाद वो शांत हो जाएंगे वो। अगर तुम मानोगे नहीं तो दिन भर छोड़ेंगे नहीं तुमको, बोलते रहेंगे तुमको, ऐसे ऐसे बोलते हैं। इसलिए बताते हैं कि इस दुनिया में रहते समय कैसे जीना चाहिए वो भी पता चलना चाहिए, ऐसे बताते हैं। लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए ऐसे बताते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने एक टॉपिक कवर किया है कि इस भौतिक दुनिया के चीज़ों को लेकर ये अच्छा है बुरा है बोलना नहीं चाहिए। देखिए अभी लोग बोलते हैं अच्छा पुणे का क्लाइमेट बहुत अच्छा, अभी आज देखो कितना मौसम कितना बढ़िया है, पुणे में एयर कंडीशन सिटी जैसा लगता है अच्छा। लेकिन अभी बाहर मार्केट में जाना है, जोरदार बारिश होता है, लोग बोलते हैं अरे अभी भी मैंने अप्रिशिएट किया, अभी बारिश शुरू हो गया, देखो जा नहीं पा रहा हूँ, बारिश को कोसते हैं ऐसे। अगर और 4 दिन के लिए बारिश रुक गया हम बोलेंगे अरे बारिश नहीं होगा तो धान्य कैसे हो गया, वो क्यों बारिश क्यों नहीं होता है, अरे क्या करना चाहिए बोलो, बारिश बरसाना चाहिए कि नहीं बरसाना चाहिए। वो इंसान चाहता है कि सब कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, वो सोचता है कि जब मैं मार्केट में जाऊंगा बारिश रुक जाना चाहिए, अभी घर के आने के बाद अंदर आने के बाद बारिश होना चाहिए घर। तो इस तरह हिरण्यकश्यप भी ऐसे कंट्रोल करता था, कभी पार्क में जाता था शाम को, ऊपर देखता था आसमान में है हल्का बारिश, ऐसे बोलता था तो उसका हल्का बारिश मिलता था उसको। तो लोग भी चाहते हैं ऐसे पूरा कंट्रोल चाहते हैं इसमें, लेकिन कंट्रोल है नहीं हमारे पास इस दुनिया में। तो इस दुनिया में ये बोला गया कि इस तरह के भौतिक पदार्थों को लेकर अच्छाई बुराई मत देखो, क्योंकि उसमें बहुत समय की बर्बादी हो जाएगा उसमें। क्योंकि हम कोई बोलता है कि देखो ये कॉलगेट अच्छा है, दूसरा बोलता है कॉलगेट अच्छा नहीं है क्लोजअप अच्छा है, उसमें नीला रंग का आता है ट्रांसपेरेंट और सुंदर है वो, अरे देखो तुम्हारा ये ट्रांसपेरेंट वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इस तरह की तुलना मत करो दुनिया के चीज़ों के, वो बोलते हैं। कारण क्या है, परमपिता राजनाथ स्वामी महाराज ये कहानी बताते थे उन दिनों में। एक बार एक जमींदार था, ऐसे 4-5 लोग बड़े बड़े इंडिपेंडेंट कंपाउंड वाला घर था, अलग अलग घर में रहते थे, ऐसे वो रहता था। तो एक दिन एक उसके कंपाउंड के अंदर एक घोड़ा आ गया, तो पड़ोस वाला आकर बोला कि तुम्हारे कंपाउंड के अंदर घोड़ा आ गया, अपने आप आ गया, तुमको पैसा नहीं बना पड़ा, अच्छा हो गया तुम्हारा, तुम्हारा सौभाग्य है। तो वो बोला देखो भगवान को मालूम है, जो भी होता है भगवान की इच्छा भगवान की मर्जी, ऐसा वो बोलता था हमेशा। कुछ 4-5 दिन के बाद वो घोड़ा चला गया, तो वो बोला कि अरे घोड़ा चला गया क्या, तुम्हें तो भी दुर्भाग्य प्राप्त हो गया, अपने आप आया वो चला गया। तो यह व्यक्ति बोला देखो पहले तो वो था नहीं मेरा, अपने आप आया अपने आप चला गया, तो सब भगवान की मर्जी, ऐसे बोला उसने। और कुछ दिनों के बाद वो घोड़ा अपने फ्रेंड को भी लेके आया, 2 घोड़े आ गए अभी। तो बोला अरे पहले एक ही था अभी 2 आ गया, अभी डबल लक तुमको प्राप्त हो गया, दुगुना हो गया तुम्हारा लक, अच्छा है। तो वो बोला ठीक है सब भगवान की मर्जी बोला। तो एक दिन उसका बेटा घोड़े में बैठकर सवार होकर ऐसे ही सड़क में तेजी से भागा रहा था, तो घोड़ा इतना तेजी से भागा उसका बेटा गिर गया उससे ऊपर से नीचे गिरकर उसकी टांग टूट गया उसका, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में एडमिट किया उसको। तो पड़ोस व्यक्ति आए बोले क्या, अरे घोड़े तो आए लेकिन तुम्हारे तुम्हारे बेटे की टांग तोड़ दिया उसने, क्या तुम्हारा तो ये तो गुड लक बैड लक हो गया तुम्हारा। वो बोला पता नहीं क्यों भगवान क्यों करते हैं उनको ही पता, क्या करते हैं भगवान उनको ही पता है, भगवान की इच्छा, बोला उसने। तो इतने में दो दिन के बाद सरकार के लोग आ गए बोले कि आपके बेटे को आर्मी में भेजो, एक युद्ध होने वाला है अभी, सबको भेजो। तो पड़ोस के लड़के को पकड़ कर लेके गए वो, लेकिन इसके लड़के को पकड़ा नहीं, क्यों, हाँ उसका पैर टूटा था उसका। तो पड़ोस आकर बोला कि अरे तुम कितना भाग्यशाली हो, हमारे बेटे को लेके गए, तुम्हारा बेटा घर में है, तुम्हारा गुड लक है। तो वो बोलता था ऐसा भगवान की इच्छा, कल तुमने बोला कि दुर्घटना हुई लेकिन अभी देखो भगवान ने क्यों किया उनको ही पता। तो इस दुनिया में इस तरह आप देखेंगे गुड लक बैड लक गुड लक बैड लक लोग बोलते रहते हैं ऐसे दिन में सुबह से रात तक ऐसे। लेकिन भगवान के भक्त इस दुनिया की अच्छाई बुराई को कैसे देखना चाहिए वो इस श्लोक में बताया गया है। इस श्लोक में बताया गया कि इस दुनिया के अच्छाई बुराई के ऊपर हम आलोचना विवेचन करते रहेंगे इस तरह, तो हमें भगवत चिंतन नहीं होगा लेकिन भौतिक दुनिया का चिंतन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे जिह्वा और मन के बीच में संबंध है। जो भी हम जिह्वा में बड़बड़ करते हैं वो मन में घुस जाता है, वो और बार बार वो मन में वो विचार आते रहते हैं, और जिस चीज़ के बारे में विचार आता है मन में वही विषय हम बोलते भी हैं जिह्वा से, तो दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए ये बक्सा ठाकुर बताते हैं कि हमें क्या तुलना करना चाहिए, वो बता रहे हैं तुलना करना चाहिए भौतिक दुनिया में एक बद्ध जीव और मुक्त जीव, इनके बीच में तुलना देखना चाहिए बद्ध जीव और मुक्त जीव के बीच में। जैसे एक बार बड़े विद्यार्थियों के ग्रुप में मैंने एक प्रश्न पूछा, देखो सी क्लास जेल का मतलब है आपको सुबह ठंडा पानी में नहाना पड़ेगा आपको, और रात को सोते समय आपको मस्किटो नेट नहीं देंगे, और भोजन जो होता है एकदम सिंपल होगा दाल राइस बस दूसरा कुछ नहीं, लेकिन आपको ये क्लास जेल होगा तो आपको सुबह नहाने के लिए गर्म पानी, रात को सोने के लिए मस्किटो नेट मिलेगा, ब्लैंकेट भी मिलेगा आपको, और भोजन रोज आपको पुलाव कड़ी खिलाया जाएगा। अच्छा हा? तो आप बोलो आपको सी क्लास जेल चाहिए ए क्लास जेल चाहिए, सब लोगों ने ए क्लास के लिए हाथ वो खड़ा किया। सिर्फ दो चार विद्यार्थी बैठे थे लगभग 200-300 बच्चों में, तो उनको पूछा कि आपको सी चाहिए बी चाहिए ए चाहिए, आप लोग क्यों हाथ नहीं ऊपर गए, बी चाहिए क्या पूछा मैंने। वो बोले हमको जेल ही नहीं चाहिए प्रभु जी, बोला ऐसे वो बुद्धिमान थे वो, है ना। इस तरह इस दुनिया में भी सी क्लास जेल क्या है, नरक लोग हैं, बी क्लास जेल में हम लोग हैं अभी, ये बहुत ये भूमि क्या है बी क्लास जेल, ए क्लास जेल किधर है स्वर्ग है। कुछ लोग सोचते हैं कि देखो इधर हमें पुणे में इतना पोल्यूशन है प्रदूषण है इतना, एकदम स्वच्छ पानी भी मिलता नहीं, सब्जी में आजकल विटामिन नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि अगर स्वर्ग में जाओ सब एकदम माहौल सुंदर है उधर, लोग सोचते हैं कि स्वर्ग में बहुत लंबा साल भी आयु जी सकते हैं हम लोग है? और उधर आनंद ही आनंद है। लेकिन स्वर्ग के लोग भी भारत में जन्म लेना चाहते हैं, मालूम है आपको, पांचवें स्कूल में पढ़ते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उधर भी टेंशन है, कभी असुर लोग आ जाते हैं उधर भी है? असुर लोग भाग कर आते हैं, इंद्र को धोती पकड़ कर वो दौड़ना पड़ता है उसको भी है? अचानक। तो इस तरह स्वर्ग लोग के लोग इधर आना चाहते हैं, हम लोग क्यों उधर जाएंगे है? जैसे इस तरह हम देख सकते हैं कि इस दुनिया में ये जब तक ब्रह्मांड के अंदर हैं हम लोग, अंदर ही अंदर तुलना करने से कुछ लाभ नहीं। प्रभुपाद जी बोला करते थे कभी कभी सुअरों के बीच में मीटिंग होता था, एक सुअर बोलता था कि ये उस गली में आपको सिर्फ सूखा विष्ठा मिलता है, इस गली में आपको गीला विष्ठा मिलेगा। तो गीला हो सूखा हो वो दोनों गंदा है ना। इस तरह प्रभुपाद जी बोला करते थे कि दुनिया के चीज़ों को लेकर ये अच्छा है वो बुरा है क्या तुलना से क्या लाभ प्राप्त होगा तुमको है? मेरा उदाहरण नहीं है वो, है प्रभुपाद जी का उदाहरण है। लेकिन सुअरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही कहते हैं ना वो है? इसलिए ग्राफिकल या इस तरह मनुष्य लोग भी जो इस दुनिया के चीज़ों में ही पलते हैं उनके लिए इस दुनिया का चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, है ना। लेकिन भगवान से ठाकुर बोलते हैं कि कंपेयर अ लिबरेटेड सोल टू अ कंडीशन सोल, तो आप भौतिक दुनिया को तुलना करो किससे, आध्यात्मिक दुनिया से। वो आप एक पूरा क्लास भी कर सकते हैं आप, अभी आध्यात्मिक दुनिया के बारे में वर्णन कर सकते हैं, चिंतामणि प्रकृति सत्म कल्प वृक्ष है, कितना सुंदर है उधर, उधर कल्प वृक्ष होते हैं, गाय होते हैं, आपको दिन भर दूध दे सकते हैं, कल्प वृक्ष में किसी भी तरह का फल आपको मिल सकता है किसी भी सीजन में आपको, हाँ इस तरह। लेकिन भौतिक दुनिया में क्या क्या कमियाँ हैं, भौतिक दुनिया में उसके बारे में चर्चा करो। हाँ, भौतिक दुनिया में कैसे ये दुखालय है, ये अशाश्वत है, लेकिन भगवत नाम शाश्वत है, वो आनंद का समुद्र है। इस तरह यह तुलना श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि हमको इसको छोड़कर उधर ही जाना है, इसलिए उसके बारे में तुलना करना श्रेष्ठ है। ये वो श्रेष्ठ है, ये निम्न ये कर सकते हैं। इसलिए गीता के 15वें अध्याय में आप देखते हैं वो तुलना है ना, एक पेड़ है उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है पानी में, ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम, भगवान तुलना करते हैं। क्योंकि इस तरह की तुलना से एक जीव को कल्याण प्राप्त हो सकता है, परम कल्याण प्राप्त होता है। क्योंकि जीव समझ जाता है कि इस दुनिया में मैं सुखी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि इस दुनिया को धुआं से तुलना किया गया है और भगवत नाम को आग से तुलना किया गया। जैसे जब आप आग जलाते हो चूल्हे में, साथ साथ धुआं भी निकलता है कि नहीं? लेकिन अगर आपको धुआं से तकलीफ होता है आपको आंखों में, वो नाक के अंदर घुस जाता है, आंखों में आंसू आता है, तो धुआं को निकलना तो आप क्या करोगे? आप क्या करेंगे? आप कैसे बुझाएंगे? आग को बुझा देंगे आप, बुझाने से और धुआं बढ़ जाता है। आपने देखा है थोड़ा पानी निकल डाला उसमें, पूरा कमरे में धुआं फैल जाता है। क्या करेंगे? हवा देंगे। तो उसके लिए एक फूंकनी होता है, देखा आपने, एक लंबा। अभी फूंकनी को सीधा लेकर धुआं के ऊपर रखकर फूफू करो फूंकनी से, क्या होता है, वो धुआं फैलेगा पूरे कमरे में, सब लोग चिल्लाएंगे आपके ऊपर, अरे क्या धुआं फैला रहे हो सब कमरे में। लेकिन वो फूंकनी को किधर डालना चाहिए? आग के अंदर डालना चाहिए, सीधा आग के अंदर डालना चाहिए। करो, आग जब बड़ा हो जाता है तभी धुआं अपने आप खत्म हो जाता है। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्यों? इस दुनिया में हम लोग इस दुनिया के समस्याओं को सुलझाने के लिए हम धुआं के ऊपर फूंक रहे हैं। हम लोग इस दुनिया में सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं इसको सेटल करने के लिए, भगवान को भूल कर सब लोग इस दुनिया में धुआं के ऊपर फूंक रहे हैं सेटल करने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे, धुआं और बढ़ जाता है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि सीधा तुम भगवत धाम में, भगवत धाम में तुम्हारा कनेक्शन जोड़ो उसके साथ, तो उधर ध्यान देने से क्या होता है, इतना आग का वर्धन का मतलब क्या, हमारे आध्यात्मिक जीवन में वर्धन जब होता है आध्यात्मिक चेतना, उससे क्या हो जाता है, धुआं खत्म ही हो जाता है। तो देखिए, इस दुनिया में हम लोग लोगों के नाम रूप, उनके क्रियाएं, कार्यकलाप इत्यादि के बारे में हम चर्चा करते हैं ना, हम बोलते हैं कि वो बुद्धिमान है, ये बुद्धू है, हम बोलते हैं कि ये बहुत धनी है, ये गरीब है, इस तरह के जिसमें तुलना करते हैं दुनिया में। इसके बदले हमें भगवान के नाम रूप लीला गुण लीला चेष्टा इत्यादि के बारे में चर्चा करना किसके बराबर है? फूंकने को किधर डालने के बराबर है? आग में डालने के बराबर है। क्योंकि उसका जब वर्धन होगा उतना ये धुआं निकल ही जाएगा। इसलिए आप देखेंगे वृंदावन में माहौल ऐसा है वृंदावन में कि सब लोग एक ही विषय के ऊपर चर्चा करते हैं कि कृष्ण को कैसे खुश किया जाए, वही बात चर्चा है वृंदावन में। कोई भी हो, जैसे कोई हवा बह रहा हो, वो कृष्ण को, कभी कभी सूर्य बहुत धूप कड़ी हो जाता है वृंदावन में, तो हवा सोचता है कि अभी मैं तुरंत कृष्ण की सेवा करूँ, कृष्ण को खुश करूँ। लेकिन हवा जाते समय यमुना बोलती है, अरे मेरे से थोड़ा पानी भी उठा के लेके जाओ, बगीचे के फूल बोलते हैं, मेरे से थोड़ा सुगंध भी लेके जाओ साथ में। इस तरह सब लोग कृष्ण की सेवा में जुड़ना चाहते हैं उधर वृंदावन में ऐसे। और इस तरह सब जीव राशियाँ अपने हृदय में मन ही मन सोचते रहते हैं कैसे कृष्ण के आनंद को बढ़ाया जाए। हमारे एक बार परम पूज्य नवगेंद्र महाराज आए थे पुणे में, वो बता रहे थे कैसे वृंदावन में सब लोग काम करते समय भी कृष्ण के बारे में स्मरण करते हुए गीत गाते हैं उधर, जैसे यशोदा मैया आपको मालूम है वो जैसे माखन को माखन बनाने के लिए मंथन करती है ना, वो करते समय उसके कुंडल आवाज करते हैं ऐसे टिंग 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 आवाज करते हैं ऐसे, और उसके हाथ में जो कंकड़ हैं वो भी आवाज करते हैं, और ऐसे आंख बंद करते हुए वो गीत कुछ तो कुछ गाती है मुंह में, और गाती हुई वो करती है। इस तरह वृंदावन में आजकल भी देखने को मिलता है कि आप कभी कभी खेती में जाकर देखो लोग उसको मार रहे हैं ना, वो धान्य को निकालने के लिए है, वो मारते समय वो गाते हैं। तो महाराज बता रहे थे एक बार, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, यमुना के तीरे ओ यमुना के तीरे, मोहन तेरी बंसी। तो बता रहे थे कि उनका गीत सरल होता है, कोई भी समझ सकता है, लेकिन उस गीत गाते समय वो कृष्ण किधर क्या कर रहे हैं उसके बारे में गीत गाते हैं। अभी देखो टाइम कितना हुआ, 8:20 सुबह, 8:21 को भगवान निकलते हैं गोचरण के लिए। अगर 8:21 को कोई अगर खेती में हो तो तुरंत उनके मन में चित्र छाया आ जाता है, चित्र आ जाता है कि भगवान अभी गाय अपने गाय बच्चों के साथ मित्रों के साथ अभी निकलने वाले हैं, तुरंत उसके बारे में सोचते हैं वो। अगर 1 बज गया दोपहर को तो अभी लंच टाइम आ गया भगवान की, इस तरह सोचते हैं इस तरह। तो इस तरह दो तरीके के नाम रूप गुण लीला होता है, एक है आध्यात्मिक एक है भौतिक। तो ये श्लोक में बताया गया कि भौतिक दुनिया के पदार्थों के बीच में तुलना करने से हमारा मन विषयाविष्ट हो जाता है, विषयों में आविष्ट हो जाता है, और विषयों में जब आविष्ट होता है वो बहुशा का ही अनंताष्ट बुद्धयो अव्यवसायिना। देखिए भौतिक पदार्थों का एक मूल गुण क्या है, उनके ऊपर अगर हम ध्यान डालेंगे ना क्या होता मालूम है आपको, हमारे बुद्धि बिखर जाता है। कारण क्या है मैं बताऊंगा आपको। अगर आपको एक मोबाइल मिला, नया नया मोबाइल मिला, उसमें आप मोबाइल के अंदर ऐसे मोबाइल के ऊपर एक कवर भी होता है, देखा आपने प्लास्टिक कवर, लोग उसको भी निकालते नहीं, ऐसे ही रखते हैं महीनों महीने, क्योंकि एकदम नया जब आता है बहुत अच्छा लगता है उनको, ऐसे रखते हैं ना, ऐसे रखते हैं। लेकिन अगर कुछ 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, आपके फ्रेंड का मोबाइल देखते हो, उसमें कुछ और कुछ फैसिलिटी है, एकदम और लुक अच्छा है, सुंदर है, फैसिलिटी है, तो मन में तुरंत क्या लगता है, हाँ वो मेल खरीद लो, वो मोबाइल खरीद लो, इसको छोड़ लो। इस तरह कार भी वो नया नया मॉडल निकालते रहते हैं, कार भी है ना, ये कार है वो ऐसे दिखता है, ये कार दूसरा ऐसे दिखता है, तो अलग अलग शेप का अलग अलग साइज का होता है, अंदर भी फैसिलिटी अलग अलग होता है, मॉडिफाई करते हैं। तो लोग भी क्या करते हैं, अलग अलग कार देखने से बेटर मॉडल है, सुंदर दिखता है, तो लोग एक पुराना मॉडल को छोड़कर नया मॉडल देना चाहते हैं, कभी कभी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, दिस इज अ कार विच एवरी मैन शुड हैव, अगर आप पुरुष हो तो आपके पास ये कार होना पड़ेगा। तो सब बीवियां अपने पति को बोलेंगे देखो आपको खरीदना पड़ेगा अभी, इस तरह एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो लोग भी पुराने कार को बेचकर नया खरीदते हैं ना। लेकिन आजकल के जमाने में इतना नया नया मॉडल हर 3 महीना आता है, निकलता है, लोगों को धोखा दे रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, बोलते हैं ना इस तरह करते हैं, नया 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 बनाते जाओ और थोड़ा थोड़ा पैसा भी बढ़ाते जाओ उसका भी है ना, ऐसे करते हैं ऐसे। तो ये क्यों बोला मैंने आपको, भौतिक दुनिया के पदार्थ ऐसे हैं कि आप एक को पकड़ो, आपको वो पकड़ते ही तुरंत आपको शांति मिलेगा आपको, लेकिन वो शांति हमेशा के लिए टिकेगा नहीं, उस समय तक टिकेगा जब तक नया मॉडल निकला नहीं। नया मॉडल निकलने के बाद क्या होता है, उसकी ओर ध्यान जाता है, तो पुराने को आप छोड़ देते हैं। जैसे बच्चा होता है, पहले टेडी बेयर खरीद कर दो, टेडी बेयर के साथ ही रहेगा दिन भर, दिन रात सोते समय भी ऐसे रख लेगा वो टेडी बेयर को, देखा आपने। थोड़ा बड़े होने के बाद ट्राईसाइकिल दो, वो टेडी बेयर एक कोने में चला जाएगा वो, अभी ट्राईसाइकिल, उसके बाद बाईसाइकिल दो, ट्राईसाइकिल कोने में, है कि नहीं। इस तरह आप देख सकते हैं दुनिया में, दुनिया ही ऐसे बनाया है भगवान ने, भगवान ऐसे बनाया दुनिया में, एक चीज को पकड़ो हम में उसके धीरे धीरे हम बोर हो जाते हैं उससे, बोर हिंदी में क्या बोलते हैं, बोर हो जाना, बोरी हो जाना, बस ऊब जाते हैं हम, हाँ ऊब जाते हैं। तो एक लेक्चर मैंने सुना, यशोदा मैया कृष्ण को अनादि काल से दूध पिला रही है, अनंत काल तक पिलाते रहेगी, कभी ऊब नहीं जाती है वो। लेकिन इस दुनिया में हम लोग ऊब जाते हैं, क्योंकि भौतिक पदार्थ का लक्षण ही है लोगों को इस तरह ऊब जाने के, ऊब जाते हैं लोग, क्योंकि ऐसे बना गया है पदार्थ। क्योंकि हर पदार्थ मर मिटने वाला है इस दुनिया में, और ये पदार्थ रिलेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव, सापेक्ष होता है, सापेक्ष। इसके कारण हमें किसी भी चीज़ में संतुष्टि प्राप्त होता नहीं है इसमें। हमें स्टैंडर्ड बढ़ाना है, और बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए। जैसे भोजन होता है, पहले तो लोग सोचते हैं कि अगर कभी कभी ट्रेन में जाते समय अगर कोई आकर प्रसाद देते हैं तो थैंक यू बोलते हैं उसको, लेकिन वो जाने के बाद देखते हैं कि क्या बनाया प्रसाद, हम लोग इसे और बढ़िया बनाते हैं, ठीक नहीं बनाया, ऐसे थोड़ा ये करते हैं, आलोचन विवेचन कर ये करते हैं ऐसे, ठीक है अभी घर से ही बना कर लेके जाते हैं, अगले बार प्लानिंग किया, और घर वाले इतने अच्छे बना कर देते हैं, फिर भी हम बोलते हैं ठीक है उन्होंने जो बना कर दिया था पिछले तो उससे अच्छा है, लेकिन और भी अच्छा बन सकता है, ऐसे लगता है। देखो ये जो सुरन बनाया ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो ऐसे बेंड होता है, क्या बनाया तुमने। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे जिह्वा ऐसा है कि जितना भी अच्छा दो और अच्छा चाहता हो, इस दुनिया में उसका लिमिट ही नहीं है उसका, इस तरह। तो भौतिक दुनिया ही ऐसा ऐसा है कि हम लोग ऐसे बनाए, भगवान ये को पकड़ो, उसकी इसको पकड़ो। इसलिए भी रावण देखिए, उसको मंडोदरी कितना अच्छा धर्मपत्नी थी, उपदेश भी देने के लिए सक्षम थी वो, लेकिन उसको छोड़कर अलग अलग देवकन्याओं के पीछे पड़ा, अंत में सीता माता के पीछे पड़ा, सर्वनाश हो गया उसका, हम देख सकते हैं इस दुनिया में। क्योंकि इस दुनिया में इंसान जब तक अपने मन और इंद्रियों को संयमित नहीं करता है और अपने चित्त को भगवान में नहीं लगाता है, उस व्यक्ति को इस दुनिया में तृप्ति संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए चाणक्य एक श्लोक में बोलते हैं, संतोष त्रिषु कर्तव्यो स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैवन कर्तव्यो स्वाध्याय जपदान यो हो। बताते हैं तीन विषय जो हैं वो आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्या है? स्वदारे, अपने ही पत्नी में संतुष्ट होना चाहिए। भोजने, अपने ही घर में बनाकर भोग चढ़ाकर प्रसाद पाना चाहिए, होटल में जाकर नहीं खाना चाहिए। और धने, जो धन आपके पॉकेट में भगवान ने दिया है उससे संतुष्ट रहो, किसी के पॉकेट के अंदर हाथ मत डालो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन तीन चीज़ों में आपको तृप्ति नहीं होना चाहिए। क्या है? स्वाध्याय, तप, जप, दान यो। स्वाध्याय, जप, दान यो। स्वाध्याय का मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैंने एक बार पढ़ लिया भगवद गीता, अभी आप भागवत पढ़ना चाहिए, उसके बाद चैतन्य पढ़ना चाहिए ऐसे। स्वाध्याय और जप, जप सोलह माला हो गया, ठीक है और दो माला प्रेम माला कर लेते हैं आज, इस तरह हम कर सकते हैं। दान देने में भी बहुत प्रेम से दान देना चाहिए, इसे बताते हैं। तो इस तरह बताते हैं कि हमें इस भौतिक दुनिया के तुलना से हमारे मन को निकाल कर, अभी आप लोग समझ गए ना, भौतिक दुनिया की चीज़ों में डालने से क्यों हमारा बहुशाखा होता है, करेक्ट ना? क्यों बहुशाखा ही अनंत हर्ष बुद्धि हो अव्यवसाय ना, क्योंकि किसी भी भौतिक चीज़ को लो आप देखेंगे कि हम इससे वो श्रेष्ठ है, उससे ये श्रेष्ठ है, इससे हाँ उसे बेहतर मिलेगा मिला करके ढूंढते 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 हम मल्टी ब्रांच हो जाता है इसे। लेकिन भगवान के ऊपर ध्यान लगाने से एक एक कुरनंदन होता है, मालूम है क्यों? कारण क्या है? देखिए ये आपने सुना है, नमामेश्वरम सचित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम यशोदा व्योलोकालाधावमानं परामृष्टमत्यंत तो द्रुत्य गोप्या। देखिए इस गीत में सत्यव्रत मुनि जो गा रहे हैं वो बता रहे हैं कि हे भगवान, ये जो दृष्टि है आपके बाल गोपाल का, बाल मुकुंद मनसा स्मरामी, ये बाल गोपाल का जो रूप है, इस रूप को मैं सदा नित्य निरंतर में देखते रहूं और कुछ मुझे कुछ भी ना नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं वह। और कैसे वर्णन दे रहे हैं देखिए, ये जब बाल गोपाल भाग रहे हैं यशोदा मैया से दूर, यशोदा मैया उनके पीछे कर रही है, तभी भगवान के शरीर में विविध आभूषण है, जैसे कुंडल है, जैसे नेकलेस है, जैसे नूपुर है पांव में है, हाथ में भी भगवान पहने हैं, जैसे ज्वेल से बनाया हुआ ज्वेल्ड बेल्ट है, बेल्ट भी है, सब पहने भगवान एकदम चमक रहा है सब आभूषण। एक भागवत में एक श्लोक है, विस्मापनम स्वस्य च सौभगर दे परम पदम भूषण भूषणांगम। जिस भूषण जिस आभूषणों को भगवान के शरीर में पहनाते हैं ना, वो आभूषण और सुंदर हो जाता है, ऐसे बोला गया। तो मुझे बहुत सालों से प्रश्न था कि ये क्यों इस तरह बोला गया, अगर आप लोग पहनते हो कुछ आभूषण आपके शरीर में तो हम क्यों पहनते हैं आभूषण, हमारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए है ना। जैसे अगर किसी लड़की की शादी करना हो तो ये ऐसे पहनाते हैं ना, इधर भी पहनाते हैं, इधर क्या बोलते हैं उसको, बिंदिका बोलते हैं, मांगटीका बोलते हैं, मांगटीका पहनाते हैं, और इधर से नाक से इधर भी पहनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इधर से इधर, इधर इधर नहीं, इस साइड में इधर है ना, नतनी नहीं, नतनी का मतलब है ये नोस रिंग, नोस रिंग को नतनी बोलते हैं, नोस रिंग नतनी बोलते हैं, ये भी पहन ऐसे नेकलेस पहनाते हैं, विविध आभूषण कंकड़े पहनाते हैं। तो खास करके अगर नया नया शादी कर रही है कोई, हाँ पूरा पहनाते हैं ऐसे, हाँ तो ऐसा पहनाकर उसके सुंदरता को बढ़ाने के लिए ऐसा पहनाया जाता है, सिल्क साड़ी पहनाया जाता है ना, और इसके इसके भी ऊपर सेंट भी लगाते हैं और भी कुछ कॉस्मेटिक वगैरह लगाते हैं सब कुछ है ना। लेकिन अगर भगवान के शरीर में आभूषण डालो, आभूषण का सुंदरता बढ़ता है बोला गया। कारण क्या है, भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति का कांति निकलता है, इसके कारण आभूषण भगवान के शरीर के कांति से आभूषण चमकते हैं, इसलिए आभूषणों की सुंदरता और बढ़ जाता है, ये कारण है। और दूसरा बताया गया कि भगवान के आभूषण जो पहने हैं उनमें से ये सत्यवत मुनि बता रहे हैं कि सबसे भाग्यशाली आभूषण कौन है मालूम है आपको, कुंडल। क्यों कुंडल, वो कुंडल जब भगवान भागते हैं वो हर बार ऐसे भागते समय वो उसके गाल को बार बार चुंबन करता है, वो ऐसे चुंबन देता है भागते समय। तो उसको देख रहे हैं कौन, सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि कितना बड़ा भाग्यशाली, देखो ये तुम्हारे शरीर के शरीर को छू भी रहा है और चुंबन भी दे रहा है, ये कितना भाग्यशाली आभूषण, ऐसे बता रहे हैं हम। तो इस तरह कृष्ण के वर्णन बताकर अंत में बोल रहे हैं कि किस श्लोक में बोल रहे हैं कि मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, बोल रहे हैं आई डोंट वांट मोक्ष आल्सो, वो क्या पैराग्राफ, वो उसमें एक पैराग्राफ आता है ना, वरम देव मोक्षम न मोक्षवदिं वा न चान्यं वृणेहं वरेषादपीह इदं ते पूर्णाथ गोपालवालम् सदा मे मनस्यावेरास्ताम की मंजयी, ऐसे बताते हैं ना। हे भगवान, आप मुझे नरक में भी रखो, स्वर्ग में रखो, अपने धाम वैकुंठ में ले लो, जो भी आपको करना हो, जिधर भी लेना हो लाभ ले लो, मुझे चिंता नहीं, बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपकी मेरे चित्त में, मेरा चित्त आपके इस स्मरण में आविष्ट हो जाएगा ना, त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त है, बोलते हैं ना इस तरह, भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांज सोल्बणमुरु व्यसनम भवाब्दीम नेश्येत भवत गुण कथा मृतपान मत्तः। देखिए लास्ट लाइन में ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, नेश्ये भवत गुण कथा अमृत पान मत्तः, आपकी कथा गुण अमृत में मेरे चित्त मत्त हो गया है, ऐसे बताते हैं। मत्त का मतलब है एक तरह का पागल, ऐसे आनंदित हो गया है मेरे चित्त, इसलिए आपको सोचते सोचते मैं भौतिक दुनिया को ही भूल ही जाता हूँ मैं, ऐसे बोलते हैं वो इस तरह। तो अभी देखिए क्यों ये बताया मैंने, ये गीत आपको बोला, भगवान के ऊपर ध्यान लगाने से आपका चित्त एकाग्रत चित्त हो जाएगा, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, ये इसमें आता है ये गजेंद्र के प्रार्थना में, एकांति भक्त का मतलब क्या है, उसका एकमात्र ध्यान किसके ऊपर है, भगवान के ऊपर है, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, बाकी किसी भी तरह के आकर्षण नहीं है उसके। वांचंती ये वही भगवत प्रपन्ना, प्रपन्ना का मतलब है जो आपके चरणों में शरणागत है। अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्नाः, बताते हैं अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, आपके चरित्र बहुत मंगलमय है ऐसे बताते हैं। आनंद गायंत आनंद समुद्र मग्ना, इसका मतलब है उधर आपके भक्त लोग भगवत नाम में क्या करते हैं, आनंद के समुद्र का मतलब है रबड़ी का समुद्र जैसा है, उसमें ऐसे डुबकी लगा रहे हैं जैसे शार्क नहीं तो डॉल्फिन, ऐसे डुबकी लगा रहे हैं, डुबकी लगा लगा लगाते लगाते कुछ रबड़ी अंदर भी चला जाए तो नो प्रॉब्लम, उसको का भी लेंगे हमें ना। तो इस तरह गायंत आनंद समुद्र मग्न, इस तरह वो बता रहे हैं। ये आपने सुना ना, ये मराठी में एक बोलते हैं ना, आनंद गड़ी गड़े, वो क्या बोलते हैं उसको, आनंदी गड़े, आनंदी आनंद गड़े, इकड़े तिकड़े चौबी कड़े बोलते हैं। एक बार बोल रहे थे, अभी याद आ गया मुझे तुरंत, लोकनाथ महाराज बोल रहे थे एक बार, है ना। वो भगवत धाम का वर्णन है, वो आनंदी है आनंद है ऐसे, क्योंकि वो आनंद का भंडार, आनंद का समुद्र है, इसलिए हमारे चित्त ये नहीं होता, विचलित नहीं होता है, एकाग्र एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, ऐसे बोलते हैं। तो लास्ट में मैं एक पॉइंट बोलने वाला हूँ, कंक्लूडिंग पॉइंट। देखिए हमारे भागवत में भी बड़े बड़े भक्त भी कुछ दोषारोपण करते हैं, उदाहरण के लिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्व गृहेशु गृह मेदिना, बोलते हैं ना ये परीक्षित आपने पूछा कि किस चीज़ों के बारे में हमें बात नहीं करना चाहिए, चर्चा नहीं करना चाहिए, श्रोता सुनना नहीं चाहिए, वर्णन नहीं करना करना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, जिसमें किस विषय के ऊपर, ये बता रहे हैं कि हजारों विषयों के भौतिक विषयों के ऊपर लोग चर्चा करते हैं, क्रिकेट के बारे में चर्चा करते हैं, लोग पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं, कैसे इनकम टैक्स से बचना है वो चर्चा करते हैं इस तरह। तो बोले कि इस तरह सहस्रशः बोलते हैं, उन चीज़ों के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहिए। इस तरह सुखदेव गोस्वामी एक तरह की आलोचना कर रहे हैं, किनके बारे में, भौतिकवादियों के बारे में। आप बोलेंगे प्रभु जी आज अभी तक आपने बोला कि भौतिकवादियों के बारे में आलोचना विवेचना नहीं करना चाहिए, वो क्यों, सुखदेव गोस्वामी खुद करते हैं, वो शिष्य को समझाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए वो शिष्य परीक्षित को समझा रहे हैं, वो एक बात है। और दूसरी बात है, अगर हम भगवान से जुड़कर हमें किसी की क्रिटिसाइज हम कर सकते हैं, उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको, जैसे भागवत में जब रमा देवी आती है वो समुद्र मंथन लीला में है, बाहर आती है एक हाथ में एक हार लेकर, तभी वो अलग अलग लोगों को देखते हैं कि ये हार किसको पहनाया जाए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि देखो लक्ष्मी तो भगवान नारायण की धर्मपत्नी है, वो तो सीधा जाकर नारायण को पहनाना चाहिए, वो क्यों ढूंढ रही है किसको पति के रूप में स्वीकारो, वो सिर्फ एक तरह का नाटक कर रही है, क्योंकि दुनिया के लोगों को सिखाने के लिए कि बड़े बड़े लोगों के अंदर भी कुछ न कुछ त्रुटि है। जैसे वो बता रही है कि शुक्राचार्य बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन अपने वेतन की लालसा में उन्होंने बलि को गलत मार्गदर्शन प्रदान किया, इसलिए उनको रिजेक्ट किया उन्होंने। और उन्होंने बोला इंद्र खूबसूरत है, देवताओं का राजा भी है, लेकिन बड़ा डरपोक है, जब असुर लोग उधर आ जाते हैं भाग जाता है वो, इसलिए उनको भी नकार दिया उन्होंने। तो बोला कि रावण जैसे बड़े लोग बड़े पुरुष अनेक स्त्रियों को लाकर उनको अच्छी तरह खाने पीने की व्यवस्था रहने की व्यवस्था सब किया है, लेकिन खुद ही वो क्षणभंगुर है, इतने कम समय जिया है, ऐसे लोगों से क्या लाभ है, खुद ही वो क्षुद्र है, मर मिटने वाले लोग हैं ये लोग, इस तरह बोला उन्होंने। और उन्होंने बोला कि मैं परशुराम बड़े पराक्रमशाली है, लेकिन थोड़ा भी कृपा नहीं है अंदर है, इसलिए बोला कि लेश मात्र भी करुणा नहीं है। तो अगर स्त्री इच्छा करती है कि पति उसके साथ अच्छी तरह प्रेममय व्यवहार करे हैं, तो उन्होंने सोचा कि परशुराम से क्या लाभ, ये तो बड़ा डेंजर आदमी है, 21 पीढ़ियों को राक्षसों को क्षत्रियों को उन्होंने मारा है, इस तरह सोचा उन्होंने। शिव जी को देखा उन्होंने, बोला कि शिव जी का नाम ही शिव है, इसका मतलब ऑस्पिशियसनेस, ऐसे बोलते हैं। वो तपस्या में बड़े श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन उन्होंने बोला देखो वो श्मशान में रहते हैं और शरीर में पूरा भस्म को पहनते हैं, हमेशा उनके गले में एक सर्प हमेशा रहता है इस तरह है, और भूत प्रेत पिशाच इनके साथ संग रखते हैं हमेशा है। तो इस तरह उन्होंने बोला कि ये सब अशुभ है, इसलिए उनको भी नकारा उन्होंने। इस तरह अलग अलग लोगों का नाम लेकर उनके अंदर दोषारोपण किया करके अंत में लक्ष्मी बोलती है कि इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो पूर्ण है और श्रेष्ठतम व्यक्ति है, कौन है वो? नारायण। लेकिन नारायण में भी एक दोष देखा उन्होंने, उन्होंने बोला नारायण में क्या दोष है, मैं उनको पसंद करती हूँ लेकिन वो मुड़कर देखते नहीं मुझे, सिर्फ उतना ही दोष है, फिर भी मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, उनका पदकमलों के पाद संवाहन करना वही मेरा सेवा होगा, तो मैं उनको ही शादी करूंगी। इस तरह बोलकर उनके गले में हार पहनाकर उनके छाती के अंदर प्रवेश कर लिया उन्होंने, क्योंकि लक्ष्मी को उधर रहने के लिए एक सोने का बाल होता है उनके, वो लक्ष्मी का स्थान है रहने का। इस तरह लक्ष्मी ने उनके नारायण के चित्त में एक स्थान प्राप्त कर लिया उन्होंने ऐसे। तो इस कथा में हम देखते हैं कि दोषारोपण जो किया जा रहा है वो नारायण से तुलनात्मक रूप से किया जा रहा है। इस तरह मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर भौतिक दुनिया में किसी को हमें क्रिटिसाइज भी करना हो तो हमें भगवान और भगवत धाम से संबंधित हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इस तरह उन्होंने किसी भौतिक साधारण व्यक्ति को चुना नहीं उन्होंने। तो अब ये श्लोक जो बोला हमने वापस दोहरा कर हम प्रवचन को विराम देंगे। व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ दैट वर्स? पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति यह निंदति सह्याशु ब्रश्यते स्वार्थात् असति अभिनिवेशतः। तो बोलते हैं इस तरह पर स्वभाव, दूसरों की व्यवहार और दूसरों के स्वभाव इत्यादि के बारे में तुम प्रशंसा निंदा मत करो, इस तरह बोलते हैं। लेकिन रामचंद्रपुरी के लीला जो आता है सीसी में, उसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, वो निरुक्त डिक्शनरी से वो बता रहे हैं कि ये दोनों में प्रशंसा करना निंदा करना, इसमें अगर आप प्रशंसा करेंगे किसी की वो बुरा नहीं माना गया, लेकिन निंदा करना बुरा माना गया, क्योंकि प्रशंसा कभी कभी ईर्ष्या से उत्पन्न होता है, कभी कभी वो जेन्युइन भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। खास करके वैष्णवों के बीच में हम किसी वैष्णव से प्रेरणा लेकर उनकी प्रशंसा करना बहुत लाभदायक है, और उस तरह की प्रशंसा करने से हम भक्ति में हमारा वर्धन भी होता है इस तरह है। तो हमें सोच लेना चाहिए कि प्रशंसा करते समय ये सोचकर हमें प्रशंसा नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या होकर नहीं प्रशंसा करना चाहिए, वो बात समझना चाहिए। तो मैंने बोला आपको प्रवचन की शुरुआत में मैं सीक्रेट बताऊंगा आपको एकाग्रत चित्त के लिए, अभी आप लोगों ने समझ लिया है ना, यही सीक्रेट है। आविष्ट चेता नभवाय कल्पते, ऐसे एक श्लोक है भागवत में, आविष्ट चेता का भगवान में चित्त को आविष्ट करो न भवाय कल्पते, ये भवसागर खत्म हो जाएगा आपको, ऐसे बताते हैं। तो यही मर्म है, रहस्य है कि हम भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि को रेगुलर तरीके से हम पढ़े और उसके ऊपर ध्यान लगाए, और इस भौतिक दुनिया जिसमें जो हमको गलत दिशा में खींचता है उन चीज़ों से हमें ऊपर उठकर, जैसे अभी एक श्लोक बोलते हैं कि सत्संग में आने से आपको कुछ संग निकल जाता है, करेक्ट है ना, क्योंकि आप इधर भी नहीं रह पाओगे। अगर आज कुछ लोग नहीं आए इधर, वो सिनेमाघर में जाकर बैठे हैं उदाहरण के लिए, हैं तो अगर जो इधर आ गए वो लोग सिनेमा नहीं जा पाएंगे, है। इस तरह बोला गया कि भगवान के स्मरण में जो चित्त आविष्ट होता है वो भौतिक पदार्थों में आविष्ट नहीं होगा, लेकिन भौतिक पदार्थों में विषयाविष्ट चित्ताना विष्णुर आवेश ना भवेत, ये विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण बोला गया है, विषय आविष्ट चेताना चित्ताना विष्णु आवेश ना भवेत। अगर हम विषय में, इस दुनिया के विषय में आविष्ट हो गए तो हमारे चित्त विष्णु में आविष्ट नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे चित्त अभी तक दुनिया के विषयों से छूटा नहीं है और भगवान के ऊपर हमारा चित्त पूर्ण रूपेण बैठा भी नहीं है, स्थित भी नहीं हुआ है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे गुरु के आश्रय लेते हैं, क्योंकि गुरु का चित्त इस दुनिया से ऊपर उठ गया और उनका चित्त कृष्ण में आविष्ट हो गया है। इसलिए गुरु के आश्रय लेकर, उनके प्रवचनों को सुनकर और उनके आदेशों को अपने जीवन में उतार कर हम भी धीरे धीरे हम ऊपर उठते हैं और हमारे चित्त को उठाते हैं। और कुछ कुछ हमारा मल्टी ब्रांच होता है, कुछ कुछ सिंगल ब्रांच होता है। थोड़ा जब तक भगवान का ध्यान से हम नाम जपते हैं इस तरह। तो आज मैं तीन विषयों के बारे में बोला, कोई बता सकते हैं सारांश में? हाँ, ये श्लोक बोलने के बाद तीन विषयों के बारे में बोला। पहले किस विषय के बारे में हमने एलाबरेटली चर्चा किया? किसके बारे में? किस किस गुण दोषों के बारे में? हाँ, इस भौतिक दुनिया के गुण और दोषों के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे उसका अंत ही नहीं है, उसमें बड़ा डिबेट हो जाएगा। उदाहरण के लिए कंजर्वेटिव लिबरल, कुछ लोग बोलते हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट डिवोटी है, यह बोलते हैं ये बड़ा लिबरल डिवोटी है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। देखिए, आपको मालूम है गोविंद प्रभु एकदम लिबरल डिवोटी है, फ्रेंडली डिवोटी है गोविंद प्रभु, बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं उनको, खास करके टीनेज बच्चे, अगर मैं जाऊँगा तो भाग जाएंगे वो, राधे श्याम प्रभु बहुत स्ट्रिक्ट है ऐसे। लेकिन अभी गोविंद प्रभु का एक लीला बताता हूँ आपको। देखिए, वाड़ा में, गोवर्धन एको विलेज वाड़ा में एक बार हम लोग प्रसाद ले रहे थे, गोविंद प्रभु और श्यामानंद प्रभु के बीच में एक डिबेट हुआ। तो श्यामानंद प्रभु बोले कि अभी गोवर्धन एको विलेज शुरू हो गया, हमें पिज्ज़ा क्यों आप लोग शुरू नहीं करते, पिज्ज़ा पास्ता पेस्ट ये सब शुरू करना चाहिए। और क्या बोलते हैं, पिज्ज़ा और पास्ता और हाँ बर्गर ये सब शुरू नहीं करते, ऐसे उन्होंने पूछा। तो तुरंत गोविंद प्रभु बोले कि अरे ये तो विलेज प्रोजेक्ट है, फॉरेन लोग इधर आते हैं, वो लोग इधर आकर गांव का खाना चाहिए, वो लोग भाकरी खाना चाहिए, चपाती खाना चाहिए, राइस दाल खाना चाहिए, वो लोग सीखना चाहिए, हम लोग वैदिक फार्मिंग बोलते हैं उनको सिखाना चाहिए, इधर क्या हम पिज्ज़ा पास्ता ये सब खिलाएंगे, इधर कुछ नहीं रहना चाहिए इधर, ऐसे बोले गोविंद प्रभु। तो श्यामानंद प्रभु बोले नहीं नहीं देखो, अगर तुमको नहीं चाहिए तो तुम मत खाओ, वो लोग लाएंगे इधर, वो लोग इधर आएंगे तो उनको अच्छा लगता है, उनके लिए रखेंगे हम। नहीं, गोविंद प्रभु नहीं नहीं उनके लिए भी नहीं रखना चाहिए, हम उनको सिखाना चाहिए कि सही ढंग से कैसे जीवन जीने का, हमारे जैसे चपाती सब्जी राइस दाल ये सब खिलाएंगे हम उनको, ऐसे बोल। ये सर दोनों का वाद विवाद चलता रहा, तो मैं भी उधर बैठा था देख रहा था। तो तुरंत गोविंद प्रभु ने मेरे ओर मुड़कर बोला, श्यामानंद बोला अभी ठीक है हम राधे श्याम से पूछ लेते हैं, ऐसे बोला। तो मुझे पूछा गोविंद प्रभु ने, तो आपका मत क्या है? तो मैंने बोला पिज्ज़ा वगैरह नहीं रखना चाहिए। तो गोविंद प्रभु ने जो बोला वही सही चीज़ से बोला मैंने, क्योंकि ये तो फार्म है, फार्म कम्युनिटी है। तो तुरंत श्यामानंद प्रभु ने पकड़ा मुझे, बोला कि हे राधे श्याम, अगर रघुनाथ महाराज बोलते हैं कि पिज्ज़ा रखो तो क्या करोगे, ऐसे पूछा मैंने। तो मैंने बोला ठीक है, अगर महाराज बोलते तो हम क्या बोलना, ना कैसे बोलेंगे हम, ठीक है हम रखेंगे। हाँ, श्यामान बोले देखो अभी रखेगा राधे श्याम, महाराज बोलेंगे तो रख देगा राधे श्याम प्रभु बोला। तो गोविंद प्रभु ने मुड़कर पूछा मुझे, राजभव तो महाराज को बोलोगे कि नहीं? तो मैंने बोला अगर महाराज मुझे मेरा मत पूछेंगे तो बोलूंगा मैं। है देखो देखो अभी राधे श्याम ने क्या बोला, ऐसे बोल रहे थे दोनों। तो क्यों बोला मैंने आपको, कुछ लोगों का मत, अभी एक व्यक्ति ने लेटर लिखा मुझे, बोला कि प्रभु जी आपके मंदिर बहुत कमर्शियल दिखता है, तो क्या आपको कमर्शियल दिखता है लिखी है, मैंने लिखा बोला इतना बड़ा गोविंद दास है। तो मैंने उनको पूछा आप गोविंद दास में आते हो क्या? वो बोला कि हफ्ते में दो बार आता हूँ। तो अगर तुम दो बार आकर तुम कहते हो अगर हम गोविंद दास को बंद कर देते हैं तो आपको क्या होगा? हाँ प्रभु, उसके बारे में सोचा नहीं अभी तक, ऐसे बोल रहा है। तुम जैसे लोगों के लिए बना कर रखा हमने, ऐसे बोल रहा। ठीक है, दूसरा व्यक्ति लिखा है, लेटर लिखा मुझे, भाई आपके टेम्पल कमर्शियल दिखता है क्यों? इतना बड़ा गिफ्ट स्टॉल है, ऊपर नीचे इतना विशाल है, क्या चल रहा है, आप लोग इतना बड़ा बनाने क्या जरूरत है? तो मैंने उसको लिखा कि देखो कैंप हमारे मंदिर के पास एक बड़ा सुपरमार्केट है ना, आपने देखा इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है, इतना बड़ा वो पूरा गली को गली तक इधर से उधर तक है, हम तो उतना बड़ा नहीं बनाया हम लोगों ने, शायद उसका 1/4 बनाया होगा हमने। और मैंने बोला कि देखो हमारे गिफ्ट स्टॉल में सब कुछ कृष्ण से जुड़े हैं, ऐसा एक भी चीज़ नहीं है जो कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है। और उधर देखो तुम्हारे बच्चों के लिए खरीदने के लिए चीज़ है, पत्नी के लिए खरीदने के लिए चीज़ है, तुम्हारे लिए खरीदने के लिए चीज़ है, अलग अलग चीज़ है, सारे दुनिया भर के भगवान से जुड़े संबंधित चीज़ों को हम रखते हैं, और उसमें जो भी प्रॉफिट मिलता है वो भगवान की सेवा के लिए जाता है। तो अगर कर्मी लोग इतना बड़ा शॉपिंग मॉल बनाते हैं तो हम लोग भगवान के लिए नहीं बना सकते हैं, ऐसे मैंने लिखा। तुरंत उसने लिखा हाँ प्रभु जी समझ लिया, सॉरी प्रभु जी बोल दिया उसने, लिख दिया उसने। तो क्यों मैंने बोला आपको, अलग अलग लोग इस तरह अलग अलग चीज़ों को लेकर वाद विवाद करते हैं। अभी गोविंद प्रभु लिबरल भक्त हैं लेकिन कुछ चीज़ों में वो बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं। अभी आपको मालूम है हमारे भक्त रामानंद महाराज एकदम मधुर हैं, वो हैं प्रेम से बात करते हैं, हरे कृष्णा से बोलेंगे ना प्रेम से। लेकिन एक बार लोटस वॉइस मीटिंग हुआ बालगोविंद में अरेंज की थी, उधर महाराज ने बोला कि माताओं को घर में रहना चाहिए, नौकरी के लिए नहीं जाना चाहिए बोले। तो चार पांच माताएं थी जो तरुणी थी, वो कंपनी में नौकरी कर रही थी, और कुछ लोग MBA किया था कुछ माताओं ने, वो मंदिर के हाल में आ गए, महाराज जी प्रवचन दिया, प्रवचन के बाद इतने प्रश्न भाग महाराज के पास आ गया, बहुत से प्रश्न, सब प्रश्न एक ही प्रश्न था। क्या प्रश्न था? महाराज जी अगर किसी स्त्री ने MBA किया है, वो घर में रहती है, घर के काम करती है, लेकिन बहुत पैशनेट है, उसको कंपनी जाने की इच्छा होता है, वो कंपनी जाकर आने के बाद भी वो पति को संभालेगी और घर को संभालेगी, ऐसे नौकरी कर सकती है क्या? ऐसे कोई माता ने प्रश्न पूछा। कोई माता जी बोलती है महाराज जी अगर कोई बच्चे भी मेरा पैदा हो जाएगी, बच्चे के लिए भी कंपनी में व्यवस्था है। आपको मालूम है टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी में मैंने सुना बच्चे छोटी बच्चे को भी माता लेके जा सकती है, उनको संभालने के लिए उनके पास नौकर चाहिए, वो बोलते हैं कि नौकर के पास बच्चे को दे दो तुम काम करो कंप्यूटर में, ऐसी व्यवस्था है, जा सकते हैं क्या? तो महाराज एक ही जवाब दिया, महाराज बोले कि स्त्रियों को घर को संभालना श्रेष्ठ है। महाराज एकदम शांति से बोल रहे थे, महाराज वो तो हिले नहीं महाराज। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो क्योंकि मैं कोई भी शादी हुए लोग आते हैं मेरे पास, मैं उनको बोलता हूँ कि माता जी भी काम कर सकती है जब तक बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद बच्चे को देखभाल करना होता है माता जी के लिए, इसलिए उसके बाद नौकरी को छोड़ सकते हैं, उस समय तक कुछ तो कमा कर अपने अकाउंट में रख सकते हैं, ऐसे मैं बोलता था। तो अलग अलग लोगों का सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है, लेकिन मैंने क्यों बोला आपको, लिबरल लोग भी कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रिक्ट लोग भी कुछ चीज़ों में, इसलिए लेबल मत करो किसी को, हैं वही पॉइंट है, किसी को भी हमें लेबल नहीं करना चाहिए कि ये लिबरल, कौन व्यक्ति किस में लिबरल है किस में स्ट्रिक्ट है क्या हमको मालूम है? मालूम नहीं, इसलिए पूछ लेना अच्छा है उनसे इस विषय में आपका मत क्या है, करेक्ट है ना? इसलिए वो पहला पॉइंट यही पॉइंट हमने चर्चा किया कि भौतिक दुनिया में लिबरल स्ट्रिक्ट गोला गोरा काला ये धनी गरीब इस तरह की अच्छा बुरा ये इस तरह अच्छा बुरा के बारे में हमने चर्चा की थी। बुरे लोग भी बाद में अच्छे बन सकते हैं, अभी अजामिल अच्छा था लेकिन बुरा बन गया, वो बाद में वापस अच्छा बन गया है ना। इस तरह से इस दुनिया में क्या करना चाहिए, लोगों को देखते समय अभी की स्थिति देखना चाहिए, पुराने स्थिति नेकेड पंचों को छोड़ देना चाहिए है ना, वो बात हमने चर्चा की पहला विषय। दूसरा विषय क्या हमने चर्चा की इसके बाद? हाँ वो तुलना करना चाहिए, एक हरि बोल बोल दीजिए इनको, हरि बोल, सही पॉइंट को पकड़ लिया उन्होंने, वो पॉइंट को पकड़ लिया तो उसके बाद हम उदाहरण वगैरह सब याद कर सकते हैं। देखिए हम प्रवचन को सुनते हैं या तो उदाहरण को याद रखना चाहिए उससे कॉन्सेप्ट पर जाना चाहिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट को याद रखना चाहिए तो उदाहरण को याद आ जाएगा, दोनों में से कम एक याद रखना चाहिए ऐसे। तो वो हम बता रहे थे ए क्लास ए क्लास एल बी क्लास वगैरह बता रहे थे। वो तीसरा पॉइंट क्या बोला, कोई माताएं बोलेंगी, अभी दो प्रभु जी से आ गया दो पॉइंट, कोई माताएं बोलेंगी, व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट? अगर कोई माता नहीं बोलेंगी तो आपको पूछेंगे, ठीक है? यस माता जी, यस हाँ ठीक, हाँ ध्यान देना चाहिए, हाँ करेक्ट, वो करेक्ट पॉइंट है। तो वो फूंकने को लेकर हमें चूल्हे के अंदर फूंकना चाहिए बोला हमने, तो वो पहला पॉइंट था, उससे एक महत्वपूर्ण पॉइंट में निकाला उस वो बोलने के बाद। आपने सही बोला, भी वो उदाहरण सही है आपने बोला, वो कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट हमने निकाला उसके बाद उसी पॉइंट के ऊपर अदर। हाँ, उसके लिए मैं क्या बोला, हमारे चित्त को किस में आविष्ट करना चाहिए, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि में आविष्ट करना चाहिए चित्त को। तो अगर हम गीत गाते रहेंगे जैसे वैष्णव गीत, अगर हम भागवत पढ़ते रहेंगे, धीरे 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 हमें भगवान के ऊपर, देखिए हमारा मन जितना हमारा मन शुद्ध होता जाता है उतना आकर्षण का भी वर्धन होगा, आकर्षण भी बढ़ता जाएगा ऐसे, तो वो करना चाहिए। आविष्ट चेता नभवाय कल्पते भागवत में बोला गया है, उस भगवत धाम और भगवान के ऊपर ध्यान लगाने से ये भौतिक दुनिया अपने आप मिट जाएगा, पीछे रह जाएगा वो, हम भगवान के पास वापस लौट जाएंगे। देखिए भौतिक दुनिया के लोग हमेशा मैं मेरा इसके बारे में सोचते रहते हैं, मैं और मेरा, अपने जैसे अगर कुछ देवता के मंदिर में भी जाते हैं वो बोलते हैं कि मुझे पास चाहिए एग्जाम में, मेरे बिजनेस में प्रमोशन दे दीजिए, इस तरह मैं मेरा के बारे में ही वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त क्या करते हैं, भगवान के माता पिता कौन है, भगवान के भाई बलराम, भगवान के मित्र, भगवान के गाय, भगवान के धाम, भगवान के यमुना, भगवान के गोवर्धन, तो भगवान और उनके संबंधित चीज़ों के बारे में अपने चित्त में बार बार स्मरण करके अपने पूरा उनका चित्त डूब जाता है उसमें। तो एक व्यक्ति का चित्त इधर डूब रहा है, मैं मेरा और इधर भगवान और उनका, तो चित्त आपका जिधर है उधर आप जाएंगे, अगर मेरा चित्त इधर है तो इधर ही आएंगे ना वापस, अगर चित्त उधर जाता है तो उधर जाएंगे, समझना आपने। इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि हम देखिए यूजलेस टॉक से डिबेट और फॉल्ट डिबेट आता है, आर्ग्यूमेंटेशन एंड डिबेट, यूजलेस टॉक आर्ग्यूमेंटेशन एंड डिबेट। मैंने बोला ना आपको दो ब्रह्मचारी जो आयुर्वेद और एलोपैथी के बारे में यूजलेस टॉक शुरू किया तो डिबेट हो गया आर्ग्यूमेंट डिबेट, और उससे क्या होता है फॉल्ट फाइंडिंग, दोषारोपण शुरू होता है, उसके बाद ब्लास्फेमी होता है, उसमें अपराध होता है। तो अपराध का मूल कारण क्या है, प्रजल्प है, इसलिए अपराध को काटना है तो हमें प्रजल्प को काटना है। इसलिए बोलने लायक चीज़ों को बोलना चाहिए, सोचने लायक चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, ध्यान देने योग्य लायक चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस तरह करने से हम लोग हमारे चित्त शुद्ध हो जाता है, हम ऊपर उठते हैं। तो लास्ट श्लोक आई विल टेल एंड आई विल कंक्लूड विद कीर्तन। व्हाट वाज दैट, एक सुंदर श्लोक जो लास्ट लाइन आपको बोला था मैंने, आविष्ट चेता अनुभवाय कल्पते, वो श्लोक है संस्मरयंश्च चिंतयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोर् आविष्ट चेता अनुभवाय कल्पते। तो इस श्लोक में बोलते हैं कि नाम रूप गुण लीला इत्यादि में जो रमाते हैं इस तरह करने वालों के चित्त भगवान में आविष्ट होता है। थैंक यू। तो आप लोग बहुत सालों साल श्रीमान राघवेंद्र प्रभु और भक्तनिधि माता जी के ग्रुप में जुड़े हैं, और नियमित रूप से मैंने सुना कि दो मीटिंग होता है, एक इधर होता है एक कोथरड़ में होता है ना, तो उसके साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि गीता भागवत चैतन्य चरितामृत इत्यादि के ऊपर प्रभु जी प्रवचन देते हैं, तो आप लोगों को हमेशा डुबो कर रखते हैं भगवत चिंतन में बहुत अच्छी तरह सालों साल। और मैंने ये भी सुना है कि प्रभु जी और माता जी ये लोग सेवा में लीडिंग करते हैं, जैसे इंजन लीडिंग करता है सब, बाकी सब बोगी इस पीछे उनके पीछे आता है, इस तरह कुछ भी सेवा हो सब उसमें सामने रहकर करते हैं, एक अच्छा आदर्श उदाहरण है। तो जिस तरह प्रभु जी और माता जी कर रही हैं, इस तरह आप लोग भी अपने अपने बस्ती में लोगों को प्रचार करके मंदिर से जोड़ कर, और कुछ लोगों का एक छोटा झुंड बनाकर उनको मेंटर बनकर असिस्टेंट काउंसलर बनकर उनको करते हैं ले रहे हैं। तो मैं 5 मिनट में करूँगा कीर्तन, उसके बाद आप सबको परिचय करा देना सबके साथ।